क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहां का हकीम, कहां का फकी, कहां इस जहां का, कहां का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीहे मसलूब की मनादी करते हैं, जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि तुम के जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवकूफों बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदा को नेस्त करें, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फखर ना करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यसु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी और पकीजगी और मखलसी। ताकि लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो फखर करे वो खुदावंद पर फखर करे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम मसीही जिंदगी में उन बेफायदा और फायदा की बातों पर गौर कर रहे हैं, और कल हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने पत्र से कहा, ऐ शैतान दूर हो, तू मेरे लिए क्या है, ठोकर का बाइस है। सो आए हम खुदा के जुर झुकें और दुआ करें। कादरे मुतले खुदा, आज हम तेरे कलाम में से खुदावंद खुदा जो कुछ सुनने वाले हैं, जो कुछ खुदावंद खुदा देखने वाले हैं, हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे, और खुदावंद हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, खा यहूदी हो, खा गैर यहूदी और खा कलीसिया, हम किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को जब खुदावंद ने कहा कि मेरा वक्त आ गया है, मैं कुर्बान होने जा रहा हूं, तो पत्रस ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े कह सकते हैं कि अतफाक के साथ, हौसला अफजाई के तौर पर, इंसानी सोच रखते हुए कहा, खुदावंद ऐसा ना हो कि तू सलीब पर जान दे और तू हमसे जुदा हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वाजह तौर पर क्या कहा था, मत्ती की इंजील उसके 16वें बाप में, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तू नहीं जानता कि तू क्या कहता है, दूसरे लफ्जों में। सो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर वाजह तौर पर इस बात को कहा कि तू मेरे लिए क्या है, ठोकर का बायस है। सो हम ईमानदारों को अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी से किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। आने वाले दिनों में हम उन आयात पर, उन हिस्सों पर, उन जिंदगियों पर गौर करें कि जिनमें बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि किस तरह ईमानदार गैर ईमानदारों के लिए, ईमानदार ईमानदारों के लिए और ईमानदार बच्चों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। पालूस रसूल की ये सिफ्त है, वो अपनी जिंदगी, अपनी खिदमत में इस बात पर बड़ी गौर व फिक्र करता है कि वो किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। और ये बात उसने खुदावंद यीशु मसीह से सीखी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा था कि जो कुछ मैं करता हूं उसे गौर से देखो, सुनो, समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम सब के लिए मैं ठोकर का बायस बनो। सो इसलिए हमें एक दूसरे को जांचने की या पहचानने की जरूरत है। इससे हरगिज मुराद नहीं कि आप मेरे साथ कहें कि जी मैं आपके साथ जुड़ गया हूं और सारा दिन आप बाथरूम में जाएंगे तो मैं वहां पर रहूंगा, यहां पर जाऊंगा तो मैं वहां पर रहूंगा। हरगिज कहने का मतलब ये नहीं। हमारे चाल चलन से हमें एक दूसरे को जानने की, पहचानने की जरूरत है कि हम कितने गहरे तौर पर मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई और जब मलामत का वक्त हो तो मलामत करने की जरूरत है। सो पालूस रसूल अपनी जिंदगी में क्या करता है, किसी को मौका नहीं देता कि वो किसी के लिए ठोकर का बायस बने। सो इस फानी जहान में सलीब का पैगाम क्या है, लोगों के लिए बेवकूफी, ना समझी की बातें हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई सलीब पर मेरे लिए मरे। बहुत दफा लोग जब इस भेद को, इस सच को समझ जाते हैं तो वो खाकसारी की हालत में कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि मेरे लिए मरे। कल मैं बात कर रहा था भाई नदीम के साथ गाड़ी में कि मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, जब वो किसी रेस्टोरेंट पर जाता है अगर उसमें 20 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं तो वो क्या करता है, खामोशी से जाकर काउंटर पर सबका बिल अदा कर देता है और जब लोग खा लेते हैं तो कहते हैं कि जी कितना बना, वो कहते हैं कुछ भी नहीं जी, आपका बिल किसी ने अदा कर दिया है। तो लोग हैरान होकर कहते हैं किसने ये किया, ये कौन है जिसने हमारे पैसे अदा कर दिए। तो अगर वो बंदा वहां पर मौजूद हो, उसका नाम है गैरी, तो कहते हैं कि शुक्रिया जी आपने मेरे लिए ये किया, ये आपने क्यों किया, तो वो सादा तौर पर पैगाम देता है आप इस काबल नहीं थे बल्कि ये खुदा की मोहब्बत है कि मैंने आपके लिए आपके खाने के पैसे अदा किए। ठीक इसी तरह हम काबल नहीं थे, वो उनको बताता है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की अदायगी की है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी वक्त यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं इस सादा से अमल से। उसकी जिंदगी क्या है, सलीब का पैगाम क्या है, उसके लिए खुदा की कुदरत है। और बहुत से लोगों के लिए खुदा की कुदरत नहीं बल्कि उनके नजदीक बेवकूफी है। सो यहूदी निशान ढूंढते हैं, इससे मुराद यही है कि यहूदी हर बात में शुरू ही में, जब हम पैदाइश की किताब से ही शुरू करते हैं तो यहूदी तमाम ईमानदारों में कोई कहता है खुदावंद मुझे निशान दिखा कि क्या तू मेरे साथ है। मिसाल के तौर पर जदाउन, जब खुदावंद खुदा ने उसे देखा कि वो डर के मारे छुपा हुआ सुबह का नाश्ता खा रहा है तो खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ और खुदा ने कहा कि ऐ सूरमा जोरावर, तू जा और मेरे लिए जाकर इसराइल के घराने को बचा। कजात 6 बाप में इसका जिक्र हमें मिलता है। वो सहमा हुआ कमजोर सा बंदा अपने आप को कहता है मैं यहां पर डरा हुआ बैठा हूं और खुदा का फरिश्ता कहता है कि तू इसी जोर में जा और जाकर इसराइल के घराने को मेरे लिए आजादी बख्श। सो खुदावन खुदा के लोग वहां पर हम देखते हैं जदाउन ने निशान मांगा कि अगर तू मेरे साथ है तो मुझे निशान दे। इब्राहिम ने निशान मांगा अगर तू मेरे साथ है तो मुझे निशान दे। मूसा ने निशान मांगा कि अगर तू मेरे साथ है तो तेरा निशान क्या है, जब मैं फरौन के सामने, जिसे मैंने पहली बहुत देर पहले छोड़कर भागा था, हो सकता है छोटा बच्चा था, उसे मारा भी हो, कैसे उसके पास जाऊंगा? मैंने मिस्रियों का एक फौजी, एक सिपाही मारा है, जब मैंने यहूदियों पर उसे दुख ढाते देखा था, मैं कैसे उसके पास जाऊं? अगर तू खुदा है तो मुझे बता कि मैं क्या कहूं, मुझे निशान दे। मूसा, जा फरौन के आगे खड़ा हो तो तेरी लाठी क्या बन जाएगी? सांप बन जाएगी, और उसके सांपों को निगल जाएगी, उसके सांपों पर गालब आएगी। मूसा ने निशान मांगा, दाऊद ने निशान मांगा, जदाऊन ने निशान मांगा, सैमसन ने निशान मांगा, और बहुत से लोगों ने निशान मांगा। तो जब पालूस रसूल कहता है, आपको याद है कि जब यहूदियों ने गुनाह किया था खुदा के खिलाफ, खुदा के मुनसफ, खुदा के मसाकशुदा बंदा मूसा के खिलाफ, तो आग उगलने वाले सांप आते थे और लोगों को ढसते थे और मारते थे। तो लोगों ने दहाई दी और खुदा ने मूसा के हजूर दुआ की और खुदा ने उनको एक निशान दिया था, तुम बल्ली पर एक पीतल का सांप लटका देना, जो कोई उस पर निगाह करेगा वो उस जहर से, उस मौत से बच जाएगा। सो यहूदी क्या ढूंढते हैं? निशान। वो निशान ढूंढते हैं कि खुदा हमारे साथ है, वो निशान ढूंढते हैं कि खुदा अगर तू है तो हमारे आगे जा, तू मौजजा कर। ये बहुत अच्छी बात है। यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश करते हैं। यूनानियों का जो मेन मकसद है वो क्या है? हमें हिकमत की बात आनी चाहिए, हमें ये हर भेद की समझ आनी चाहिए। वो हर दौर में क्या करते हैं? हिकमत की तलाश में हैं, हिकमत की तलाश में हैं। सो सलीब का पैगाम जब दिया जाता है तो यहूदी कहते हैं कि हमें निशान दे। यसाया 7:7 में क्या लिखा है? मैं तुमको एक निशान दूंगा, तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा, वो कवारी मरियम से पैदा होगा और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये क्या था? यहूदियों के लिए निशान, ये निशान था। फिर एक और निशान था यूना नबी के वसीला से। जैसे मछली के पेट में यूना 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम जमीन के दिल में रहेगा। ये क्या था? निशान था कि वो 3 दिन 3 रात कब्र में उतारा जाएगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा। यहूदियों को निशान पर निशान पर निशान, निशान पर निशान दिया, लेकिन उन्होंने क्या खाई? ठोकर खाई, ठोकर खाए। अपने मसीह, अपने मसा किए हुए उस मसीह को उन्होंने ना पहचाना। यूनानी निशान हिकमत की तलाश करते हैं, उनकी हिकमत को खुदा ने उनकी हिकमत की धतियां उड़ा दी, क्योंकि खुदा ही उनको हिकमत देने वाला है। वो अपनी हिकमत में हाकम बनते थे, खुदा ने कैसा किया? एक कवारी के वसीला से अपने बेटे को भेजा और यूनानियों की, डॉक्टरों की, हकीमों की, तबीबों की सोच को हलाकर रख दिया। सो यहूदी तलाश करते हैं हिकमत की, लेकिन पालूस रसूल कहता है हम, पालूस रसूल, पत्रस रसूल, सलास, बर्नबास, मरकस, मत्ती, लूका, यहन्ना, इन सब के नजदीक क्या कहता है? 23वीं आयत, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर, मौजजात का खुदा यहूदियों के नजदीक क्या ठहरा? ठोकर, और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी। हिकमत की बात नहीं ठहरा, क्या ठहरा? बेवकूफी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। सो खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत हमारे पास खुदा के कलाम में दर्ज है, इसलिए ना हम यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, और ना कलीसिया के लिए ठोकर का बायस बने। पालूस रसूल अपनी खिदमत में इस बात को बड़े ही नाजुक तरीके से लेता है कि वो किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनता। मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों, जब हम उसका छठा बाब देखते हैं तो पहली आयत में पालूस रसूल इल्तमास करता है और उनको खुदा के उस फजल के बारे में बयान करता है कि वो खुदा का फजल जो तुम पर हुआ उसे बेफायदा ना रहने दो। क्या कहता है? और तुम जो उसके साथ काम में शरीक हो ये भी इल्तमास करता, शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो। खुदा का फजल जो कहता है कलीसिया तुम पर हुआ उसे बेफायदा ना जाने दो, उसे बेकार ना करो। दूसरी आयत, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली जब तुमने यीशु मसीह को कबूल किया, और नजात के दिन तेरी मदद की। वही है जिसने हमें सलीब का पैगाम समझने की, वो कहता है हिकमत और दनाई बख्शी। देखो अब मकबूलियत कबूलियत का दिन है, देखो ये नजात का दिन है। और पालूस यहां पर कहता है हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, किसी बात में। पालूस रसूल का चलना फिरना अगर किसी लिए ठोकर का बायस है तो वो अपने चलने के ढंग पर, जिंदगी के ढंग पर गौर करता है। पालूस का अगर खाना पीना किसी के लिए ठोकर का बायस हो सकता है तो वो पालूस रसूल कहता है कि इस खाने को खाने की बजाय मेरे लिए बेहतर है कि मैं उस खाने को ना खाऊं। पालूस रसूल के लिए अगर उसकी जिंदगी किसी के लिए किसी बात में, ये लफ्ज किसी बात में हर एक बात आ जाती है, वो कहता है कि किसी भी हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते। ये हमारी अपनी क्या है मर्जी है कि हम किसी को मौका दें कि वो हमारे बायस ठोकर खाए ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए, ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। पालूस रसूल को लोग क्या करते थे, हदिया शुक्रगुजारी देते थे, तो पालूस रसूल क्या करता था, उसने तीतस और तमोथियस को मुकर्रर किया हुआ था कि पालूस रसूल कहीं ऐसा ना हो कि खुद चंदा खा जाए। उसका एक निजाम था, जब वो किसी के हाथ चंदा भेजता था तो उसके खजांची थे जिनके हाथ वो भेजता था और कहता था ताकि इसलिए कि कोई हम पर इल्जाम ना लगाए कि पालूस रसूल चंदा खा गया। जैसे आज चर्चेज में खजांची हैं, जैसे कोई भी मिसाल के तौर पर अगर मुझे चंदा देता है तो वो सहारा के साथ कहां पर जाता है, खजांची। जब खजांची चंदा इकट्ठा करता है इतवार की इबादत तो दो बंदों की निगाहबानी में वो गिना जाता है कि कितना है, और फिर जो कुछ लिया जाता है जो कुछ खरीदा जाता है उसका रजिस्टर में हिसाब किया जाता है। तो मेरा आपका, पालूस कहता है मैं किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देता। मैं कहूं कि जी मैं बहुत रहानी हूं और आप रहानी नहीं, तो पालूस रसूल यहां पर इस गर्ज से भी कहता है कि अगर मैं बच्चों के सामने, आप जो बड़े हैं मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सिगरेट पीना शुरू कर दूं और खुदा के कलाम में से आपको हवाले देने शुरू कर दूं और कहूं कि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी ऐसा हवाला नहीं जहां पर हुक्म दिया गया हो को सिगरेट ना पियो। ये दुरुस्त है, बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि सिगरेट पियो या ना पियो, लेकिन इंसानी मुआशरे में रहते हुए हम जब इस बात पर होते हैं कि सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, पहली बात सेहत के लिए अच्छी नहीं, दूसरी बात हमारे गुर्दे उसका हाल ऐसे कर देती है जैसे गले हुए सड़े हुए आलू का होता है जब उसे कोलों में पकाया जाता है, तीसरी बात हम दूसरों के लिए नमूना नहीं बल्कि नमूने बनते हैं। तो पीने को मैं सिगरेट पी सकता हूं, पीने को मैं 70-75 रुपए का सिगार पी सकता हूं, उससे आपका नुकसान क्या होगा, आपके लिए मैं ठोकर का बायस और मेरे लिए खुदावन बरकत दे। क्या हुआ, मैंने अपना नुकसान किया अंदरूनी तौर पर और आपके लिए क्या बना, ठोकर का बायस। सो पालूस रसूल किसी बात में ठोकर खाने का किसी को मौका नहीं देता। आदतों को मैं बहुत सी शुरू कर सकता हूं, लेकिन अगर वो आदतें मेरी आदतें आपके लिए ठोकर का बायस है, तो मैंने आपको क्या किया? आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करने का वसीला बना। ठोकर से मुराद किसी को गुमराह करना, किसी को बहकाना, किसी कमजोर ईमान को क्या करना और कमजोर करना। पालूस रसूल कहता है, रोमियो मेरे साथ निकालें 14 बाप, रोमियो 14 बाप, यहां पर वो खाने पीने की बात करता है। 14 बाप उसकी पहली आयत, कमजोर ईमान वालों को अपने में शरीक तो कर लो, मगर शक शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को अकीदा है कि हर चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। एक का एतकाद है, मेरा एतकाद है कि जी कट्टे के खरौंडे खाने चाहिए। एतकाद है जी हमारे दौर में, हमारे मुल्क में, कि जी हम ओजरी खा सकते हैं, हम मगज खा सकते हैं, लेकिन जब बाहर के से कोई लोग आते हैं वो कहते हैं आप खरौंडे खाते हो, आप ओजरी खाते हो, आप मगज खाते हो, आप कट्टे की जबान खाते हो। दूसरे ममालक में ये क्या है, खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि इसकी वो क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, हड्डियों को वो तैयार करते हैं ताकि वो अपने जानवरों को दें, लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, वो हम खाते पीते हैं। सो पालूस रसूल यहां पर क्या कहता है कि एक का एतकाद है कि वो हर एक चीज खा सकता है, दूसरे का एतकाद है कि वो साग पात ही खाता है, सब्जियां ही खाता है। जैसे दो किस्म के हिंदू हैं, एक हिंदू क्या है जो गोश्त खा लेते हैं, और एक हिंदू वो हैं जो गोश्त के नजदीक तक नहीं जाते। तो अगर मैं हिंदुओं में जाकर मसीह की मनाद करूं और उनके सामने मुर्गे का पीस खाऊं, या कट्टे की या गांव की कुर्बानी, गांव का गोश्त खाने का कहूं, तो मैं उनके लिए क्या बना, ठोकर, उनको बचाने वाला नहीं बल्कि उनको गुमराह करने वाला बना। इसलिए बहुत दफा जब ईद आती है, साल के 363 दिन हम घर में मुर्गी भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, और जब ईद आती है फ्री का गोश्त, एडी वड्डी पांड ते तार दे उते परो के लून दे सारे लपेटा ला के ते उन्हूं रखिया हुंदा सकान लई, ताकि असीं पूरे 3 महीने होर खा सकीए। पालूस रसूल कहता है अगर हमारा खाना पीना किसी के लिए ठोकर का बायस है, तो ऐसे खाने पीने से, वो कहता है मुझे कुछ गर्ज नहीं। अगर मेरा सिगरेट पीना किसी के लिए ठोकर का बायस है, तो उस सिगरेट को मैं फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर किसी के लिए मेरा खाना पीना कि मैं कही जाऊं कि जी इस मुल्क में बाहर खड़े हो के जी सूर का गोश्त खाना चाहिए, सूर का गोश्त खाना चाहिए, तो मैं गैर अकवाम के लिए क्या ठहरा, ठोकर का बायस। अगर मैं यहूदियों में जाकर कहना शुरू कर दूं सूर का गोश्त खाना चाहिए, यहूदियों को ये हुक्म था कि तुम सूर का गोश्त ना खाना, तो क्या हुआ, मैं उनके लिए ठोकर का बायस। सो खाना पीना भी किसी कमजोर के लिए, किसी ताकतवर के लिए ठोकर का बायस हो सकता है। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि मैं अपने खाने पीने से किसी को हकीर ना जानूंगा, और अपने खाने पीने से किसी को क्या कहता है, बिगाड़ने का या उसे बर्बाद करने का बायस नहीं बनूंगा। सो मैं किसी बात में, पालूस कहता है, किसी को मौका नहीं देता कि ठोकर का बायस बनूं, और ना ही मौका देता हूं कि कोई मुझ पर हरफ उठाए। सो आज हम मसीही हैं, अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है कि हम किन किन बातों से ठोकर का बायस बनते हैं, इन पर गौर करने की जरूरत है। ये हमारे फायदा के लिए हैं, रूहानी बातें हैं, रूहानी बातों से हमें फायदा होगा, और वो बातें, इनसे हमें सीखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप बहुत रूहानी हो और आपका पड़ोसी रूहानी ना हो, हो सकता है आप ईमान में मजबूत हो और आपका पड़ोसी ईमान में मजबूत ना हो, तो बड़े गौर फिक्र के साथ अपने पड़ोसी के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि रहनुमाई, तरक्की, हौसला अफजाई और तरबियत का बायस स्वयं खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें।